नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जनसंख्या वृद्धि को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने वाले दक्षिणी राज्यों की लोकसभा सीटें कम नहीं होंगी। सीटों में समग्र वृद्धि से सभी राज्यों को लाभ होगा। वरिष्ठ भाजपा नेता और प्रधानमंत्री मोदी आज पश्चिम बंगाल में कूच बिहार से चुनावी अभियान शुरू करेंगे। सरकार ने कहा, भारत ईरान सहित 40 देशों से कच्चा तेल आयात कर रहा है। ईरान से कच्चे तेल के भुगतान में आ रही बाधाओं की खबरों को गलत बताया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, अमरीकी लड़ाकू विमान F-15 के लापता दूसरे पायलट को ईरान से सुरक्षित निकाला गया। ईस्टर पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने लोगों को शुभकामनाएं दी। और आईपीएल क्रिकेट में आज सनराइजर्स हैदराबाद का सामना लखनऊ सुपर जायंट्स से, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु चेन्नई सुपर किंग्स से खेलेगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि केरलम, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गोवा या तेलंगाना में लोकसभा की सीटें कम न होने पाएं। कल केरलम में तिरुवल्ला में एक रैली में उन्होंने कहा कि अफवाह फैलाई जा रही है कि बेहतर जनसंख्या नियंत्रण के कारण दक्षिणी राज्यों की सीटें कम हो सकती हैं। श्री मोदी ने आश्वस्त किया कि सरकार लोगों के प्रतिनिधित्व की रक्षा के लिए कानूनी गारंटी देगी।
16, 17, 18 को दो काम करने हैं। केरल हो, तमिलनाडु हो, बाकी राज्य हो, जिन्होंने जनसंख्या नियंत्रण में अच्छा काम किया है, महिलाओं के लिए जो सीटें होगी वो अतिरिक्त सीटें बढ़ जाए, इतना बड़ा फायदा हमारे दक्षिण भारत के राज्यों को मिले, इसके लिए हम कानून संशोधन के लिए सत्र बुला रहे हैं।
प्रधानमंत्री ने सभी राजनीतिक दलों से अपील की कि वे लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण के प्रस्ताव को समर्थन दें। उन्होंने इस मुद्दे पर लोगों से अपील की कि वे विपक्ष को भी सहयोग करने को कहें। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने अलापोया में कहा कि यूडीएफ केरलम में वास्तविक बदलाव लाने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव के बाद सत्ताधारी एलडीएफ अप्रासंगिक हो जाएगा।
What does LDF stand for?
LDF का पूरा नाम क्या है? वामपंथी लोकतांत्रिक मोर्चा। सच कहें तो वामपंथ का अब कुछ भी नामोनिशान नहीं बचा है और चुनाव के बाद तो वाम मोर्चे का कुछ भी नामोनिशान नहीं रहेगा। आज LDF सरकार को कुछ सांप्रदायिक ताकतें चला रही हैं। यह भारत के संविधान को नहीं मानती, यह भारत की जनता को बांटती हैं, उन पर हमला करती हैं और उन्हें अपमानित करती हैं।
पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार तेज हो गया है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कूच बिहार से चुनाव प्रचार की शुरुआत करेंगे। एक रिपोर्ट।
पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए मतदान 23 और 29 अप्रैल को होगा। पहले चरण के लिए नामांकन प्रक्रिया 6 अप्रैल को और दूसरे चरण के लिए 9 अप्रैल को समाप्त होगी। राजनीतिक दलों ने प्रचार अभियान तेज कर दिए हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कूच बिहार जिले के रसमेला मैदान में एक रैली को संबोधित करेंगे। उधर तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष और राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल के विभिन्न हिस्सों में पार्टी उम्मीदवारों के समर्थन में रैलियों को संबोधित कर रही हैं। कांग्रेस, वामपंथी और अन्य राजनीतिक दलों ने जनसभाएं आयोजित करके प्रचार अभियान शुरू कर दिए हैं। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से राधारमन।
असम में राजनीतिक दल मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के हर संभव प्रयास कर रहे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने आज विश्वनाथ में एक रैली में आरोप लगाया कि भाजपा सरकार पिछले चुनाव के दौरान 6 समुदायों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने का वायदा पूरा करने में नाकाम रही है। उन्होंने कहा कि सत्ता में आने पर कांग्रेस इन समुदायों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देगी। उधर असम के मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता हेमंत बिस्व शर्मा ने आज बोंगईगांव जिले में अभयपुरी में एक सभा में कहा कि फिर से सत्ता में आने पर भाजपा प्रदेश के युवाओं के लिए 2 लाख रोजगार सृजित करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल असम पहुंच रहे हैं। वे भवानीपुर, सोरबोग, होजल और डिब्रूगढ़ में सभाएं करेंगे। त्रिपुरा जनजातीय क्षेत्र स्वायत्त जिला परिषद के चुनावों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने आज अपना संकल्प पत्र जारी किया। विधानसभा चुनावों पर विशेष श्रृंखला में आज जानकारी केरलम के अम्बलपोया विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की।
केरलम के अलापोया जिले के अम्बलपोया विधानसभा क्षेत्र में इस बार 4 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। मौजूदा विधायक और सीपीएम नेता एच सलाम एलडीएफ के उम्मीदवार हैं। एनडीए ने भाजपा के अरुण अनिरुधन को टिकट दिया है। एलडीएफ सरकार में पूर्व मंत्री रहे जी सुधाकरन यूडीएफ समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। जॉनसन मैथ्यू अम्बलपोया से सोशलिस्ट यूनिटी सेंटर ऑफ इंडिया कम्युनिस्ट के प्रत्याशी हैं। वर्ष 2021 के चुनावों में सीपीएम के एच सलाम ने कांग्रेस के एम लीजू को 11,000 से अधिक वोटों के अंतर से हराया था। तिरुवनंतपुरम से स्मृति एस पुल्लुरुथि की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
तमिलनाडु में भीषण गर्मी के बावजूद चुनाव प्रचार जोरों पर है। डीएम के प्रमुख एम के स्टालिन गठबंधन सहयोगियों से विरुधुनगर में मुलाकात कर रहे हैं। एआईएडीएमके के उम्मीदवार घर घर जाकर प्रचार कर रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री ई पलानीसामी नेवेली और पुदुचेरी में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। विधि और न्याय मंत्रालय में अपर सचिव केवी कुमार ने कहा है कि जनविश्वास संशोधन विधेयक से व्यापार और जीवन सुगम होगा। डॉक्टर कुमार ने आकाशवाणी को बताया कि इस विधेयक में 23 मंत्रालयों से जुड़े 784 प्रावधान शामिल हैं। उन्होंने बताया कि कारोबारी सुगमता को बढ़ावा देने के लिए कई प्रावधानों को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है।
717 provisions have been
व्यापार को सुगम बनाने के उद्देश्य से 717 प्रावधानों को अपराध की श्रेणी से बाहर किया गया है, जबकि आम लोगों के जीवन को आसान बनाने के लिए 67 प्रावधानों में संशोधन किया गया है। इस विधेयक का उद्देश्य 1,000 से अधिक अपराधों को तर्कसंगत बनाना है, जिसमें छोटे मोटे अपराधों को हटाया गया है।
फॉर बिजनेसमैन एंड सिटीजन अलाइक।
ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि भारत ईरान सहित 40 से अधिक देशों से कच्चा तेल आयात कर रहा है और ईरान को तेल के भुगतान में कोई समस्या नहीं है। श्री पुरी ने सोशल मीडिया पोस्ट में इन दावों का खंडन किया कि भुगतान से जुड़ी दिक्कतों के कारण एक जहाज को चीन की ओर मोड़ दिया गया था। श्री पुरी ने कहा कि देश की रिफाइनरियों में ईरान सहित कई देशों से कच्चा तेल आ रहा है। उन्होंने कहा कि संचालन या व्यावसायिक कारणों से जहाज अपना मार्ग बदलते हैं। श्री पुरी ने कहा कि तेल कंपनियों के पास अलग अलग देशों से कच्चे तेल के आयात का अधिकार है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि सरकार देश भर में पेट्रोल डीजल और एलपीजी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का पुनर्निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है और यात्रियों की सुरक्षा तथा सुविधा बढ़ाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि निगरानी के लिए लगभग 1500 एआई कैमरे लगाए जाएंगे। रेल मंत्री ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर अगली पीढ़ी की अमृत भारत रेलगाड़ियों के डिब्बों का निरीक्षण किया। रेल मंत्रालय ने कहा कि इन डिब्बों को यात्रियों के आराम, सौंदर्य और समग्र यात्रा अनुभव को बेहतर बनाने के लिए सोच समझकर डिजाइन किया गया है। मंत्रालय ने बताया कि इन डिब्बों को विशिष्ट आंतरिक रंग थीम से सुसज्जित किया गया है। इसमें पीवीसी फर्श, सीट और बर्थ रैक्सिन, स्नैक टेबल, पर्दे और शौचालय क्षेत्रों जैसे प्रमुख घटकों में समन्वित रंगों का उपयोग किया गया है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि बेमौसमी बरसात और ओलावृष्टि से पीड़ित किसानों को चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार स्थिति पर नजर बनाए हुए है और किसानों को हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए संबंधित राज्यों के कृषि मंत्रियों के साथ विस्तृत चर्चा की जाएगी। श्री चौहान ने कहा कि स्थिति के आकलन के बाद जरूरी कदम उठाए जाएंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जानकारी दी है कि F-15E लड़ाकू विमान के दूसरे पायलट को भी सुरक्षित निकाल लिया गया है। लड़ाकू विमान को ईरान द्वारा मार गिराए जाने के बाद से इस पायलट की खोज की जा रही थी। श्री ट्रंप ने बताया कि ये पायलट ईरान के पहाड़ी इलाके में फंस गया था। एक रिपोर्ट।
अमेरिका के F-15 स्ट्राइक ईगल विमान शुक्रवार को दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। चालक दल के दोनों सदस्य विमान से सुरक्षित बाहर निकल आए थे। विमान के पायलट को तुरंत बचा लिया गया, लेकिन एक सहायक अधिकारी दुर्गम इलाके में फंस गया था। उसे आज ईरान से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। अमरीकी अधिकारियों ने बताया कि इस अभियान में कई विमान, बचाव हेलीकॉप्टर, एक HC-130 टैंकर और A-10 थंडरबोल्ट विमान और जमीन पर मौजूद विशेष बल के जवान शामिल थे। अभियान में शामिल सभी कर्मी सुरक्षित लौट आए हैं। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि मानसिक शांति और आत्मावलोकन का महत्व बढ़ गया है और ध्यान ही समग्र स्वास्थ्य की कुंजी है। आज नई दिल्ली में विश्व ध्यान सम्मेलन में उन्होंने कहा कि ध्यान तनाव कम करने, एकाग्रता बढ़ाने और भावनात्मक रूप से सशक्त बनाने में सहायक है।
So meditation is what to me, it gives you lot of observing capacity. It keeps you always fresh mind to listen to others, to take all the positive things from others. Our lifestyle has been designed in this part of the world, in the eastern part of the world, for living.
श्री राधाकृष्णन ने कहा कि 2047 में विकसित भारत बनाने के लिए देश को अनुशासित प्रयासों की आवश्यकता है जो मन, शरीर और आत्मा के संतुलन से ही संभव है। भारत आज अपना 63वां राष्ट्रीय समुद्री दिवस मना रहा है। इस वर्ष की थीम मैरीटाइम इंडिया एम्पावरिंग प्रोग्रेस रखी गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस मौके पर मर्केंटाइल मरीन डिपार्टमेंट कंडला द्वारा दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी के सहयोग से विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है।
समुद्री गतिविधियों के महत्व को रेखांकित करने के लिए हर वर्ष 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जाता है। वर्ष 1919 में इसी दिन भारत का पहला व्यापारी जहाज एसएस लॉयल्टी मुंबई से लंदन के लिए रवाना हुआ था। इसी ऐतिहासिक यात्रा की याद में राष्ट्र मर्चेंट नेवी सप्ताह भी मनाया जा रहा है। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में मर्केंटाइल मरीन डिपार्टमेंट कंडला के संयुक्त महानिदेशक कैप्टन संतोष कुमार दारोकार ने बताया कि इससे पूर्व गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत और मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस का प्रतीकात्मक ध्वज भी भेंट किया गया। भारत ने 7,500 किलोमीटर से अधिक समुद्र तट और 12 प्रमुख बंदरगाहों के साथ समुद्री क्षेत्र में शानदार प्रगति की है। अशरफ नथवाणी, आकाशवाणी समाचार, भुज।
केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने राष्ट्रीय समुद्री दिवस पर नाविकों और पूरे समुद्री समुदाय को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि नाविकों का समर्पण राष्ट्र की प्रगति के लिए महत्वपूर्ण है। आर्टेमिस द्वितीय मिशन का दल चंद्रमा की ओर लगातार बढ़ रहा है। ये अपोलो कार्यक्रम के बाद 5 दशकों से अधिक समय में पहला मानव चंद्र मिशन है। एक रिपोर्ट।
यह 50 से अधिक वर्षों में चंद्रमा के चारों ओर जाने वाला पहला मानव युक्त मिशन है जिसमें 4 अंतरिक्ष यात्री 10 दिन की यात्रा पर हैं। दल में शामिल विक्टर ग्लोवर, रीड वाइजमैन, क्रिस्टीना कोच और जेरेमी हैंसेन पृथ्वी से 4,00,000 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय करेंगे। इस दौरान वे चंद्रमा की सतह की लाइव तस्वीरें लेंगे और डीप स्पेस से आंशिक सूर्य ग्रहण का अनुभव करेंगे। ये मिशन 10 अप्रैल को प्रशांत महासागर में लैंडिंग के साथ समाप्त होगा। अंतरिक्ष एजेंसी का लक्ष्य 2028 में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के निकट 2 अंतरिक्ष यात्रियों को लैंडिंग कराना है। समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और गृहमंत्री अमित शाह ने पूर्व उप प्रधानमंत्री बाबू जगजीवन राम को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बाबू जगजीवन राम ने अपना जीवन समानता और सामाजिक न्याय के लिए समर्पित कर दिया था। आज ईस्टर रविवार है। ये अवसर प्रार्थना, पश्चाताप और प्रभु ईसा मसीह के जीवन के अंतिम चरण का स्मरण करने के पवित्र सप्ताह का प्रतीक है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। आईपीएल क्रिकेट में आज हैदराबाद में दोपहर 3:30 बजे सनराइजर्स हैदराबाद का सामना लखनऊ सुपर जायंट्स से होगा। चेन्नई में शाम 7:30 बजे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और चेन्नई सुपर किंग्स आमने सामने होंगे। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जनसंख्या वृद्धि को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने वाले दक्षिणी राज्यों की लोकसभा सीटें कम नहीं होंगी। सीटों में समग्र वृद्धि से सभी राज्यों को लाभ होगा। वरिष्ठ भाजपा नेता और प्रधानमंत्री मोदी आज पश्चिम बंगाल में कूचबिहार से चुनावी अभियान की शुरुआत करेंगे। सरकार ने कहा, भारत ईरान सहित 40 देशों से कच्चा तेल आयात कर रहा है। ईरान से कच्चे तेल के भुगतान में आ रही बाधाओं की खबरों को गलत बताया। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, अमरीकी लड़ाकू विमान F-15 के लापता दूसरे पायलट को ईरान से सुरक्षित निकाला गया। ईस्टर पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने लोगों को शुभकामनाएं दी। और आईपीएल क्रिकेट में आज सनराइजर्स हैदराबाद का सामना लखनऊ सुपर जायंट्स से, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और चेन्नई सुपर किंग्स होंगे आमने सामने। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।